Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये सब प्रशांत हो जाए तो चित्त जो है और इस दश इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इस पर और ज्यादा उसका आकर्षण नहीं होता है. और चूंकि इस पर आकर्षण नहीं है परंतु संस्कार अगर है तो कभी कभी वो जो योग भ्रष्ट साधक जिस प्रकार से वो भ्रष्ट होते हैं, परंतु देखिए उस समय अगर स्वाधिष्ठान तक पहुंच गए. और इसीलिए इसमें मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं कि ये जो हम लोगों का भी मन में कभी कभी मन एकाग्र हो जाता है ना, सबका है, ऐसा कोई नहीं है कि कभी कभार एकाग्र नहीं होते. मन में इतना अच्छा लगता है कि बस यहीं बैठे रहे, कब समय बीत गया पता नहीं लगता है, अच्छा लग रहा है साधन भजन में, तो उस समय उनका जो है एक अनाहत में जैसे श्वास फेंक रहे ना, तो ये श्वास कहां तक जा रहे आप अगर उसको देख सकते तो कहते हैं ये नाभि चक्र से उनका मन अगर उतना शांत है तो अनाहत तक उसका श्वास जो है तब वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट एकाग्र होने की होता है कभी कभी, और वो उनको स्वाद मिलता है. ये है पचास नदी मार धारा. इस धारा में हम लोग अभी जो है 20 में ही पड़ा है. अब देखिए 12वां जो है 12 पद विशिष्ट जो अनाहत है वहां से असल में योगज प्रक्रिया प्रारंभ होते हैं. और इसीलिए गीता जी भी भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य, तो भ्रुवोर मध्य मतलब ये आज्ञा में ध्यान लगा रहे. तो ये जो ऊपर ये स्थानों को बताए ना, हृदय में चिंतन करो, यहां पर चिंतन करो, तो इससे क्या होता ना, उसको कहते हैं खींचने का एक. और हठ योगियों का तो ऐसे यही है कि उसको जगाने के लिए क्रिया भी करते हैं. जैसे आप मन को एकाग्र के द्वारा उसको जगाना चाहते हैं, योगी लोग क्रिया के द्वारा भी उसको धक्का देते हैं, जगाते हैं. इस प्रकार से महाराज 50 वेग वाली वो नदी है आपके शरीर में, और उस पर हम विचरण भी कर रहे हैं. परंतु जिस क्षेत्र में है हम लोग तटीय क्षेत्र में है, और वो जल महाराज बड़ा स्थिर है, गंदा पानी है, थोड़ा अंदर जाना है. वो जहां बहाव है, तो जहां बहाव है ना वहां गंदा उंदा कुछ नहीं रहता है, वो सब महाराज धो धा करके. तो हम लोग जो किनारे में बैठे ना, ये किनारे वाला ठीक नहीं है. ये बहना है जहां बहाव है उधर जो है मन को लगाए. इस नदी रूप से कल्पना देखिए, दो दृष्टि दिए, दोनों ही इतना अपूर्व है. पहले जो चक्र दिया ब्रह्म चक्र, उसको भी कितना अच्छा से वर्णन किया, और ये जो नदी के रूप में जो कल्पना करके जो शरीर को नदी के रूप में बताया. तो आप ब्रह्म चिंतन करने की अपेक्षा अगर हम इसी का चिंतन करके हमारी चित्त की धारा कहाँ है और चित्त कहाँ बैठे हुए है, और अभी जो मेरी स्थिति है इस पर चित्त कौन है, चित्त कहाँ है, और फिर चित्त अगर मन में ध्यान में भजन में अध्ययन में ज्ञान योग में चिंतन में अगर चित्त लगा रहे हैं, तो वो चित्त देखिए कहाँ पर पहुंच रहे हैं. इसीलिए तो संस्कार इतना प्रबल है कि हम लोग अगर मन को बैठाना भी चाहते हैं तो वो जो इसको खींच करके लाते, यही तो संघर्ष है कि वो बैठाना चाहते हैं और वो बैठने ना दे. और योगी तो लिखते हैं कि उस समय ये द्वंद्व चलता है. अगर आप कामयाब हो गए कि उसको बैठाए बैठे बारंबार, तो ये जो है कमजोर होता जाता है. हम लोग पराभत, हम लोग पराजित किसमें होते हैं, संस्कार में. और अगर आप शुभ संस्कार उतना ही प्रबल करें तो अशुभ संस्कार जो है दब जाता है. इसीलिए तो कहते हैं कि बारंबार शुभ कर्म शुभ चिंतन शुभ विचार सत भाव में रहिए, क्योंकि अशुभ को दबाने के लिए और कोई कुछ भी नहीं है महाराज. और ये इनर जो अभी तक तो हम लोग को पता लगा, इनर तो है ना अशुभ भाव, इसको आप कैसे बाहर से मिटा सकते हैं, एकमात्र शुभ विचार के द्वारा, शुभ भाव के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा. तो इसीलिए ये चिंतन ये विचार ये अध्ययन जितना होगा उतना ही वो अशुभ जो है योग सूत्र में इस टीका में सब लिखते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे कहते तीन ही तो साधना है, तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तीन, एक तो तप करो साधना, ये जो संघर्ष चल रहा आप शुभ कर्म शुभ चिंतन शुभ भजन अथवा शुभ जप ये सब कर रहे ये है तप, अथवा आप पढ़ रहे तप है, तो तपह शरीर को थोड़ा कष्ट देना है। वृत्ति जैवीय वृत्ति बहुत आपको कष्ट दे रहे तड़पा रहे फिर भी आप उसको जो है चीख कर रहे सहन कर रहे विचार के द्वारा उसको काट रहे, तो ये भी एक तप है। तो ये तप हो गया, और साथ साथ मन को तुष्ट करने के लिए स्वाध्याय, नित्य निरंतर स्वाध्याय, नित्य निरंतर स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो पार्ट उन्होंने व्यक्त किया है कि एक स्ववर्ण आश्रम उचित ग्रंथ अध्ययन वेद शाखा पाठ, और द्वितीय है स्वाध्याय, स्व का ये मन में जो भाव है उसको आप थोड़ा स्टडी करो, स्वाध्याय। तो तप हो गया फिर स्वाध्याय, और ये दोनों और पुष्ट होगा जब आप ईश्वर के प्रति ईश्वर अनुरक्ति, कितना अच्छा है। इसलिए साधक भक्त अकेले नहीं है, आप तपस्या कीजिए आप स्वाध्याय कीजिए, और आपके जो भी त्रुटि है दोष है आप ईश्वर से निवेदन करते हुए चलिए। इसलिए कोई अकेला चलता है तो उसको कष्ट होता है, और मुझे अगर ऐसा है कि कोई है तो उसके हाथ थाम करके धीरे धीरे धीरे। इसलिए योग ऋषि लोग कहते हैं योगी पतंजलि, तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान बहुत आवश्यक। ये तीन अगर हो तो फिर साधक जो है अनाहत से लेकर के आज्ञा तक, आज्ञा से लेकर के सहस्र भेदन तक वो पहुंच सकते हैं। ईश्वर प्रपत्ति शरणागति। अब देखिए अभी जो प्रसंग आ रहे हैं उसका बड़ा अच्छा एक, तो इतना हो गया ना पंचाशत भेदाहा पंच पर्वा, और पंच पर्व को भी हम लोगों ने देखा विद्या अस्मिता रागर द्वेष अभिनिवेश, और इस प्रकार से नदी रूप से कल्पना करके बताया उस उन ऋषियों ने ये शरीर को ही 50 भेद विशिष्ट चिंतन किया और प्राप्त किया। अब जो है कुछ और बता रहे कि क्यों बंधन में मनुष्य पड़ा है। अच्छा ये प्रश्न अब प्रयोजन है, अब आपके पास उत्तर नहीं है क्यों हम बंधन में पड़े हैं, एकदम दो श्लोक में तो स्पष्ट कर दिया महाराज कि क्यों बंधन में पड़ा है। ऋषि को लगा कि शायद बुद्धि उतनी शुद्धि नहीं हो, आप लोगों की शुद्धि है इसीलिए आप समझ गए, तो इसीलिए इनको स्पष्ट श्लोक ही लिखना पड़ा कि नहीं भाई मोटी बुद्धि वालों के लिए थोड़ा और लिख दे। षष्ठ श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वाब जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते
अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते सर्वाजीवे जो सर्वजीव को प्राण देने वाले सर्वाजीवे अथवा इसका अर्थ कई किया गया है सब जीवों के नियंता के रूप में जो मौजूद है सारे सृष्टि के प्रेरिता के रूप में जो उपस्थित है वो जो अथवा और एक अर्थ करते हैं सभी भूतों की जो चेष्टा है वो जिनके कारण है कौन है भाई आप कर रहे देखिए ये सब अर्थ को इतना सुंदर तरीके से रखा है कि उस अर्थ का चिंतन करेंगे तो आप थोड़ा तो सजग हो ही जाएंगे सर्वाजीवे समस्त जीवों को जिन्होंने धारण करके रखा और हमने तो भाई हमने आप अपने परिवार को धारण करके रखा कि नहीं तो रखा है आप अपने शरीर को धारण करके रखा कि नहीं रखा है तो ये जो उपनिषद वेद कह रहे सर्वाजीवे ये गलत है कि नहीं बिल्कुल महाराज अपना परिवार को मैं रक्षा करता हूँ मैं ना कमाऊ तो कोई खाने वाला नहीं है मैं कमाता हूँ मैं सुरक्षा देता हूँ मैं इसको पालन पोषण करता हूँ और आज ऋषि करे सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहन्ते वो जो बृहत है वो जो ब्रह्म है वही महाराज सभी भूतों के जीवन का आधार है और केवल आधार नहीं है सर्व संस्थे सभी का विलय स्थान भी वही है और इसीलिए महाराज अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे और ये जो हंस है ना हंस से परिचय है कि नहीं है ना ये हम कर रहे हैं ना इसी को हम कोई अगर थोड़ा सा रूढ़ता हट जाए भाई वही हंस हो जाएगा अगर इसी हंस को अगर थोड़ा और पर के साथ जोर दिया जाए तो वही परम हंस हो जाए इसलिए आप परम हंस बन सकते हैं पहले हमको छोड़िए फिर हंस बनिए फिर हंस से परम हंस को बनना है तो अभी क्या है हंस है कि हम है ये हम को हटाना है अहम को हटा करके आप हंस बनिए ऋषि कितनी उदार है हम लोगों का हम नहीं बताइए तो हमने टीकाकारों ने बताया तो ऋषि लिखते हंस भाई आप सब हम सब जो है हंस है और यही हंस जो है पर ब्रह्म को जान करके परम हंस बन सकते हैं तो ये जब तक आप हंस है ना तब तक गति है अस्मिन् हंस भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ये जो ब्रह्म चक्र दिखाया महाराज ये जो शरीर रूपी चक्र दिखाया इसमें वो हंस जो है एक बार फड़फड़ाते हुए इस पर एक बार फड़फड़ाते हुए इधर एक बार फड़फड़ करते हुए इधर इतना फड़फड़ाहट है महाराज शांत होता ही नहीं है यही है भ्राम्यते वो भ्रमण कर रहा है मैं भटक रहा है भ्रमण और भटक भटकान दो अलग अर्थ है ना भ्रमण मतलब क्या गिरीश भाई तो पहले इसी रिला दी कि क्या दोनों एक है कि मुझे तो लगता है भ्रमण मतलब थोड़ा सा ठीक है भटकान के श्रेष्ठ है ना भ्रमण क्या लगता है हाँ भटकान मतलब कोई निश्चय नहीं है इधर एक बार उधर एक बार और भ्रमण मतलब तो आप क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं कि भ्रमण कर रहे हैं? है ना, कभी कभी तो लगता है कि भ्रमण में निकले परंतु ऐसा भटकान है कि कोई निश्चय ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ आनंदगिरी जी लिखते हैं, नहीं टीकाकार लिखते हैं, भ्राम्यते न तीर्थे भ्रांत्या भ्राम्यते, अर्थात भटकान है, भ्रम से जो है इधर उधर, एक बार सोच रहे कि इधर सुख मिलेगा, एक बार सोच रहे यहाँ जाके बैठने से शांति मिलेगी, एक बार सोच रहे इधर मिलने से हमको आनंद आएगा, लेकिन ये सब भ्रम ही भ्रम है। और वो हंस महाराज मानिए तो देखिए तो वो कितना बेचैन होता होगा, सुख के लिए एक बार इधर एक बार उधर एक बार उधर एक बार इतना फड़फड़ फड़फड़ कर रहे। अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, कहते ये भटकान क्यों है भाई, कारण तो होगा ना, कोई एजुकेशन है नहीं इसीलिए भटक रहा है, कोई ज्ञान नहीं है इसीलिए भटक रहा है। बोले हाँ, ये अज्ञान ही सबसे बड़ा भटकान है। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, महाराज ये जो जीव है ना, आत्मा शब्द से जीव को लेना है, ये जीव जो है परमात्मा के साथ अलग मान रहे, अभिन्न नहीं मानता है कि भाई यह अलग है जीवात्मा, पृथक आत्मानम, और ये जीव जो है पृथक रूप से अपने को जान रहा है और ईश्वर से अलग मान करके ही यही भटकान है। इसीलिए देखिए हम लोग जो भटक रहे हैं तो ईश्वर को आत्म रूप से न जानने के कारण, ईश्वर से अपने को अलग जानने का कारण, यही भटकान है। और सारा उपनिषद उसी का प्रतिपादन करते हैं। और कब महाराज उस भटकान, वो भटकना जो है समाप्त होगा, जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति, जिस दिन महाराज उस परमात्मा के साथ जुष्टः जुष्टम एकत्वेन प्रतिबोधम, जिस दिन वो जो है जीव अलग नहीं ममई वंश जीव लोके, उस आत्मा के साथ उस परब्रह्म के साथ अभेद का अनुभव करता है, उसी दिन वो जो है अमृतत्वमेति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इतना तो ठीक है भाई, नदी में डुबकी बहुत लगाया, चक्र में बहुत घुमाया, अब जो है एक दिखा रही है चक्र से बाहर वो है, इतना तो आप लोग पहुंच ही गए हैं, तो कल इसका व्याख्यान करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा ओम शांति शांति शांति।